करेगा खालसा, बाकी रहे न तो
करेगा।
खालसा बाकी रहे न कोई, पाड़ोए सब मिलेंगे बचे शरण जो।
आदि गुरु परमात्मा है सारे जीवां नूं ज्ञान देण वाला, इस वास्ते सारे जीव शिष्य ने सिख ने और सारियां दा गुरु वो परमात्मा है जो शब्द बन के जो ज्ञान बन के सारियां दे हिरदियां नूं अंदौलित करदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख जगत नूं ऐलानिया कह दिता और कह दिता ये हुक्म है कि आ गया भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। मत कोई भरम भोले संसार, गुरु बिन कोई न उतरस पार। धार्मिक दुनिया दे चिक मन्नी पर मन्नी विचारधारा कि गुरु तो बिना परमात्मा दी प्राप्ति नहीं हो सकती, गुरु तो बिना भव सागर तो पार नहीं होया जा सकता, गुरु तो बिना निरंकार नू समझना और उस नाल जुड़ना उनू प्राप्त करना कठिन है। और फिर ऐसा भी अनुभवी पुरुष कहिंदे ने गुरु दी प्राप्ति ही परमात्मा दी प्राप्ति है, गुरु नू जान लेना ही परमात्मा नू जान लेना है, गुरु तक पहुंच जाना ही ईश्वर तक पहुंच जाना है। फिर ते समझना पड़ेगा ईश्वर की है गुरु की है। इतनी गल ते स्पष्ट है कि परमात्मा कोई काया नहीं है, व्यक्ति नहीं है, एक परम शक्ति है, एक व्यापक सत्ता है जो सत चित आनंद है, जो सदीवी है, होंद वाला है, प्रकाशमान है, आनंद स्वरूप है, जड़ नहीं चेतन है, वो एक परम शक्ति है। ऐसी जड़ी व्यापक शक्ति है उसका बोध कोई शक्ति ही करा सकती है, उसकी प्राप्ति कोई शक्ति ही करा सकती है। इस वास्ते परमात्मा एक शक्ति है, गुरु एक शक्ति है। लेकिन धार्मिक दुनिया विच ऐसा होंदा रहा है, अहंकार मनुख का जब शिखर ते पहुंचता है तो इस तरह के अहंकारियों ने दावा किया असी खुद ही निरंकार हाँ, असी खुद ही गुरु हाँ। किसी ने गुरु होण दा डिंब दिखाया, किसी ने परमात्मा होण दा पखंड किया। आदकाल तो ऐसा चले आ रहे। हरनाकश ने पखंड किया कि मैं परमात्मा। नमरूद दा ए दावा एक बहुत प्रबल झूठ से खड़ा है कि मैं ही खुदा। इस वक्त भी काफी ऐसे पुरुषों की तादाद है जो किधरे भगवान होण दा परमात्मा होण दा दावा करते हैं या किधरे गुरु होण दा जो है दावा करते हैं। इन्हां दे दावियां तो अवतारी पुरुषों ने जो मार्ग बनाए सन वो मार्ग विकृत होए ने, उन्हां दे च रोकां भी खड़ियां होईयां, उन्हां दे च दुबदा भी पैदा हुई। इसे अहंकार ने इस्लाम दे च 72 फिरके पैदा कर दिते और गालबन 3 ते बहुत वड्डे फिरके, शिया सुन्नी मिर्ज़ई। इसे अहंकार ने देखदे हैं सनातन मत विच हजारां ही फिरके पैदा कर दिते। कोई किसे समाज दा पैरोकार, कोई किसे समाज दा पैरोकार, कोई किसे देवी नाल जुड़े होया, कोई किसे देवते नाल जुड़े होया और मनुख दे हंकार ने इस तरह दे बेशतर अनंत रूप खड़े कीते ने। इस रोग तो बालातर सिख जगत भी नहीं रह सकया है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਰਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਾਅਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਨਮ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਰਨ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਤ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੁੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਨਮ ਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਿਆ ਤਸਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ, ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੜ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਇਹ ਤਰਕ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਔਰ ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਜੜ ਹੈ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਜੜ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਾਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਘਾਸ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਕੜ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਘਾਸ, ਉਹੀ ਬਾਂਸ ਤੇ ਲੱਕੜ ਜਦ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਨੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਵਰਜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਛਾਇਆ ਤੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਵਲ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬੁਰਾਦੇ ਤੋਂ ਜਦ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤਰਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਏ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ ਭਗਤ ਭਗਾਉਤ ਲਿਖੀਏ ਤੈਂ ਉਪਰ ਪੂਜੀਏ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੋ ਫਿਰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ? ਤੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਇਹ 500-700 ਰੁਪਏ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨੇ। ਤੋ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪੇ ਗੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲ ਤੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤਾਰਕਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੋਟ ਸਨ? ਉਹਨੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਕਿ 900,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਨੋਟ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 900,000 ਰੁਪਏ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਦੋ ਪਲੜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 900,000 ਰੁਪਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 900,000 ਰੁਪਏ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੁਲਾ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਤਨੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਦ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੀਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗਊ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਊਠ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, 10 ਊਠ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ। ਸਾਗ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੁਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ। ਵੱਧ ਘਟਨਾ ਆਵਣ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਤੁਲਵਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੁਭਵ, ਸਤਪੁਰਸ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਦ ਧਨ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ, ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ। ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ? ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਉਦੇਸ਼, ਇਹ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਘੜੇ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਘੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੜੇ ਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਇਸ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਬੁਝਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਲਕੇ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਨੂੰ? प्यास ते पानी नाल ही बुझदी है। ये गल वखरी है कि पानी नलके दे सी, सरोवर दे सी, घड़े दे सी या खूह दे सी। धनवाद है उस दरिया दा, उस नलके दा, उस घड़े दा, उस गिलास दा, जिस दे राही पानी पीता ते प्यास बुझी। लेकिन घड़ा पानी नहीं है, गिलास पानी नहीं है, नलका पानी नहीं है। महान है वो, सत्कारण योग है वो व्यक्ति जिसने ज्ञान जगत दे सामने रखया। पर वो आखे मैं ही ज्ञान हाँ और मैं ही गुरु हाँ, मैं ही परमात्मा। तो ये तो इस तरह हो गया जिवें कोई घड़ा आखे मैं ही पानी हाँ, जैसे कोई नलका आखे मैं ही पानी हाँ। बस एक वड्डा भुलेखा है जिसनू जो है समझना है। प्यास पानी तो ही बुझेगी, आत्मक कल्याण ज्ञान तो होवेगा, गुरबाणी तो होवेगी। ये गुरबाणी चाहे पत्थरां ते लिखी होवे, चाहे कागज ते लिखी होवे, चाहे मनुखी हिरदे ते लिखी होवे, किधरों भी लिखी होवे, आत्मक कल्याण गुरबाणी तो होवेगा। आत्मक शांति उस बोलां तो होवेगी जिहड़े परमात्मा दे बोल ने, और उसे नूं गुरबाणी कहिंदे ने, उसे नूं खसम दे बोल कहिंदे ने, उसे नूं ईश्वर दे बोल कहिंदे ने। इस संबंध च तार्किक एक होर भी तर्क खड़ी करदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बोलदे नहीं, असी बुलांदे हां, असी स्पष्ट करदे हां, असी गल नूं खोलदे हां। इस संबंध च मैं एक दलील पेश करिया करदा। एक अनपढ़ स्त्री दा पति किधरे परदेश चला गया है, मुद्दत पाके उसने अपनी पत्नी नूं प्यार भरी पत्रिका लिखी है। जिस तरह का रिश्ता होवे संबंधित अल्फाज वैसे ही लिखे जाते ने, जैसे भिरा भिरा नूं चिट्ठी लिखे तो भिरा करके ही संबोधन करता है, भाई करके संबोधन करता है, पुत्र पिता नूं चिट्ठी लिखे तो पिता रूप ही संबोधन करता है, या पिता पुत्र नूं चिट्ठी लिखे तो उसनूं पुत्र रूप दे संबोधन करता है। पति ने पत्नी नूं चिट्ठी लिखी है तो उसने पत्नी रूप च उसनूं संबोधन किया है, मेरी प्यारी पत्नी। उसका नाम उसनूं संबोधन करके ये संबंधित अल्फाज उसने लिखे ने। चिट्ठी पत्नी दे हत्थे च है, पढ़ नहीं सकती, अनपढ़ है। पड़ोसी दे घर चली गई, कहती है वीर जी ये चिट्ठी पढ़ के सुनाओ। पता नहीं किसती है, कितों आई है ये पड़ोसी। चिट्ठी खोल के पढ़न लगे, मेरी प्यारी पत्नी। गलती समझ गई, चिट्ठी पति दी है, और हुंगारा भरी जांदी है। जो जो पति ने लिखे है ये पड़ोसी पढ़ के सुना रहे है, पत्नी शौक नाल सुनी जा रही है, एकाग्र चित होके सुनी जा रही है, हुंगारा भरी जा रही है, प्रसन्न होई जा रही है। चिट्ठी पढ़ने वाले दे मन विच ए मुगालता हो जाए कि मैं ये शब्द दोहराए ने मेरी प्यारी पत्नी, और इसने हुंगारा भी भरया है, खुश भी हुई है, प्रसन्न भी हुई है, तो क्यों ना मैं दावा कर दिया तू मेरी पत्नी, मैं तेरा पति। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला जे पति होण दा दावा करे दुष्ट है, दुराचारी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी पढ़ के सुनाण वाला व्याख्याकार अगर गुरु होण दा दावा करे तो उस तों वड्डा होर कोई पखंडी नहीं, उस तों वड्डा होर कोई झूठा नहीं। सत्कार है तेरा, सन्मान है तेरा, धन्यवाद है तेरा कि तू चिट्ठी पढ़ के सुना देती। पर बदकिस्मती है तेरी कि तू दावा कर देता है कि खसम नहीं मैं, ये चिट्ठी मेरी। इस तरह दे दावे सिख जगत दे जो है मौजूद, गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी पढ़ानी, फिर मनुखता नु कह देना ये गुरबाणी कुछ नहीं, असी स्वयं गुरु हाँ, असी आप गुरु हाँ। मनुख दे हंकार ते अज्ञानता तो बिना इस दे च होर कुछ जो है प्रगट होंदा नहीं। दूसरी एक तर्क कि चार लिखे हुए ए अखर इन्हां नू ही गुरु मन लईए, इन्हां दे च की है, ये ते जड़ ने, चेतन थोड़ी ने। जे कागज जड़ है ये अखर भी चेतन जो है जड़ ने, इन्हां दे च भी कुछ नहीं। इस संबंध च एक जवाब, परदेश गए एक बच्चे ने अपने घर अज चिट्ठी लिखी है मां बाप नो, ए बहन दा एक लोता बिरा है, ए मां बाप दा एक लोता लड़का है, ए पत्नी दा प्यारा पति है। इस चिट्ठी नू पढ़ के सारा घर नच उठे, खुश हो रहे है, बार बार चुमदे पैने। सवाल ये पैदा होंदा है इन्ह घर वाले नू कौन समझाए चार अखर ही तेने जिन्हू पढ़ के नचदे पे हो, जिन्हू पढ़ के खुश पे होंदे हो, जिन्हू पढ़ के आपे तो बार पे होंदे हो। और अज एक टेलीग्राम आ गई, थोड़े जे अखर ने भी थोड़े बच्चे दा एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, उसते उसकी मृत्यु हो गई है, सारे घर दे च मातम छा गए, पहन दे हंजू थम दे नहीं, पत्नी दे स्वास थम गए ने, मां दा चलना जमीन ते मुहाल होया है, और पिता दे सिर ते आसमान डिग पे है, घर शमशान घाट बन गया है। हुण कोई तर्कशील पुरुष इन्हां नू इह आखे चार अखरां नू पढ़ के ही घर नू शमशान घाट बना बैठे हो, सिर्फ चार अखरां नू पढ़ के ही इतना वड्डा रुदन, ठीक है चार अखर ही ने, पर इन्हां चार अखरां विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पांच साल तो गया होया एक परदेसी, उसकी भी टेलीग्राम घर दे चाहिए, उसकी भी तार घर दे चाहिए कि मैं फलाने समय ते घर पहुंच रहे हैं। पांच साल तो बाद आ रहे है, मां दी अखां विच नवी रोशनी आ गई चार अखरां नूं पढ़ के, पिता दे पैरां विच नवी गति आ गई, पत्नी दे स्वासां विच पता नहीं कित्थों दी अगम्मी महक पैदा हो गई, भैणां दा हासा हुलास रुकदा ही नहीं। ते कोई ये आखे सिर्फ चार अखरां नूं पढ़ के ही घर नूं मेला बना बैठे हो, घर नूं उत्सव मंगल दा अखाड़ा बना बैठे हो, भावें चार अखर ने पर इन्हां चार अखरां विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। भावें गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चार अखर ने, पर इन्हां चार अखरां विच ही निरंकार बैठा है, परमात्मा बैठा है, ईश्वर बैठा है। अगर समझण दी तौफीक होवे, अगर जानण दा मन होवे और अंदर श्रद्धा होवे, तो इन्हां अखरां विच ही परमात्मा दी झलक मिल जांदी है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। शब्द गंभीर है, बहुत गहरा है, बहुत बुलंद है, अथाह है। इसनों समझे तो बिना जगत पागल होया फिरदा है, बौरा होया फिरदा है। परमात्मा व्यापक है, शब्द व्यापक है। दुनिया भर दे अवतारी पुरुषां ने एक आवाज हो के ये गल आखी है कि ब्रह्मंड दी उत्पत्ति दा कारण शब्द है। शब्द ओ मूल है जिस तो संसार ने जन्म लिया। प्राचीन सनातनी ऋषि उन्हां दा एक कथन कि ओम ध्वनि अनादि ध्वनि है, इसी ध्वनि तो जगत पैदा होया है, संसार पैदा होया है। जैन मत जो एक पुराना मत है, गालबन 2500 साल पुराना, ये भी इस मनोत ते खड़ा है कि ओंकार ऐसी ध्वनि है जो ब्रह्मंड दी ध्वनि है, जो ब्रह्मंड दा नाद है, और इसे तो ही समूह जीवां दी जड़ ते चेतन दी उत्पत्ति हुई है। गालबन कोई 1450 साल पहले इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब दे कंठ तो भी ये बोल निकले कि खुदा तो एक ध्वनि हुई, वो ध्वनि सी कुन जिस तो जगत बन गया, जिस तो संसार बन गया। और इसी तरीके दे नाल ईसा लोगोस नाम दी एक ध्वनि हुई ते जीवां दी दुनिया आरंभ हो गई, सूरज चंद तारियां दी दुनिया आरंभ हो गई। गुरमत दा जमाना आया, नवी रोशनी, नवे ख्याल। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो भी ये बोल निकले, कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। लखां जिंदगियां दे दरवाया, लखां जीवन दे दरिया एक शब्द तो चले, एक ध्वनि तो चले। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। ये उत्पत्ति ते ये परले शब्द तो हो रही है। शब्द व्यापक है, शब्द गंभीर है, शब्द गहरा है। इनू समझे तो बिना ही मनुखी जगत पागल है। शब्द गुरु पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। अध्यात्म दर्शियां ने इस शब्द नू फिर दो हिस्सों दे तकसीम कीता है, आहत शब्द अनाहत शब्द। जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा होवे, ए है आहत, जो ब्रह्मंड दे च व्यापक है ते जिस तो सब कुछ उत्पन्न होंदा है, वो है अनाहत। अनाहत तो ये संसार आया है। अगर ऐसा है तो मां बाप दे शरीर तो सड़ी ये काया आई है, मां बाप दी अंश शरीर दे च मौजूद है। शब्द तो संसार आया है तो संसार दे शब्द होना चाहिए। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, घट घट वाजे नाद भोगत ज्ञान दया भंडारन। घट घट वाजे नाद, घट घट देच ब्रह्म नाद वज रहे है, घन घट देच अनाहत दी ध्वनि गूंज रही है। सुनाई क्यों नहीं दे रही, सड़े कन बार मुखी सुनन दी समर्थ ने। अंतरमुखी जिस दिन जद कोई होंदा है ध्यान साधना करके, तो उसनु ये ब्रह्म दा नाद सुनाई देंदा है, परमात्मा दे बोल सुनाई देंदे ने। और उसनु सुनाई देंदे ने जो अंतरमुखी हो गया है ते खुद चुप कर गया है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, मैं ते चुप कर गया, मैं ते बोलदा ही नहीं, कसम बोलदा है, परमात्मा बोलदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज चुप कर गए, अंदरों बोलिया परमात्मा। और जड़े बोल ने चूंकि परमात्मा दा बोध करांदे ने, इस वास्ते आख्या गया गुरु बाणी, बाणी गुरु। चूंकि ये उस घड़े देचों पानी पीता गया, गुरबाणी दा आनंद माणिया गया, जिस घड़े दा नाम सी नानक, शरीर दा नाम सी नानक, अंदर जिहड़ी जोत सी, जो फिलसफा सी, जो ज्ञान सी, उसी गुरु गुरु नानक। ये जोत ये ज्ञान घर बदल दी रही है। दूसरे घड़े दूसरे शरीर का नाम सी, दूसरे महल का नाम सी अंगद। जोत ओही है, फिलसफा ओही है, ज्ञान ओही है, गुरु अंगद। गुरु जोत है, अंगद घर का नाम है, अंगद काया का नाम है। गुरु अमरदास, गुरु शब्द है, गुरु फिलसफा है, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्योति है। अमरदास शरीर का नाम है। जोत नू एक पासे कर दईए, ज्ञान नू एक पासे कर दईए, फिलसफे नू एक पासे कर दईए, उस परम प्रकाश नू एक पासे कर दईए, तो बच जांदे ने अमरदास। जोत दा संबंध जोड़ दईए तो बन जांदे ने धन गुरु अमरदास। निथावियां दे थां, निमाणियां दे मां, न्योठियां दी ओट। मूल गल कि शब्द गुरु है, विद्वान और खास करके संगीत आचार्य शब्दां नूं फिर इस प्रकार वंडदे ने। उह कहिंदे ने पंज तरह दे शब्द ने, और उन्हां दे बकायदा उन्हां ने नाम भी रखे हुए ने। तत्, वित, घन, नाद, सुर। इस दी व्याख्या इस तरह करदे ने, तत तंति वित चरम का, घन का सीका जान, नाद शब्द घट को कहें सुगर स्वास पहचान। तंति साजां दे जो जरब पुचाई जांदी है, चोट कीती जांदी है, उस तो जिहड़ी ध्वनि उत्पन्न होंदी है उन्हों कहिंदे ने तत शब्द। वित चरम का, चमड़े दे जिहड़े मड़े हुए साज ने, ढोलक है, तबला है, मृदंग है, टाबे ते आदक है, इन्हां दे उत्ते हथ दी या सोटी दी जरब दे नाल जो ध्वनि पैदा कीती जांदी है इन्हों कहिंदे ने वित। घन का सीका जान, धातुआं दे नाल जद धातुआं टकरांदियां ने, लोहे नाल लोहा, पित्तल नाल पित्तल, या सोना लोहे नाल टकराए, लोहा सोने नाल टकराए, जद धातुआं नाल धातुआं टकरांदियां ने, उस तों जिहड़ी ध्वनि पैदा हुंदी है उस नूं कहिंदे ने घन। नाद शब्द घट को कहें, घड़े दे थाप दे के उहदे चों जिहड़ी आवाज बुलंद आउंदी है उन्हों कहिंदे नाद शब्द। सुगर स्वास पहचान, जो पवन दे फूकण तो शब्द पैदा होंदा है, आवाज पैदा होंदी है उन्हों कहिंदे सुगर। शहनाई, संख, मुरली, हारमोनियम, नरसिंगे, इस तरह दे होर साज जो पवन दे फूकण दे नाल ही आवाज नूं अपने विच्चों बुलंद करके कढ़दे ने, इह आवाज इह धुनि इह शुगर शब्द जो है कहलांदी है। पशु जो बोलदे ने ते मनुख जो बोलदे ने इह भी शुगर शब्द है। क्यों? देही माटी बोले पवन। इस मिट्टी दे पुतले विच जद बोलण दा ख्याल पैदा होंदा है, फुरना पैदा होंदा है, तो पवन नाभी नाल टकरांदी है, नाफ नाल टकरांदी है। ये नाभी बिल्कुल शहनाई दा कम करती है, संख दा कम करती है। यही कारण है कि नाभी नूं साडे देश विच कहिंदे ने धुनी, जिथों धुन बुलंद होंदी है, जिथों धुन उठती है, जिथों आवाज उठती है। सारे देश दे नाफ नूं, नाभी नूं धुनि कहिंदे ने। वाकई धुन इत्थों उठती है, और जद इत्थों उठती है इहनूं कहिंदे ने परा शब्द, परा बाणी। इह उठती है पवन दे टकराव नाल, जैसे पवन नाभी नाल टकराउंदी है, नाभी थोड़ी जिहा खुलदी है, अंदरों धुन निकलदी है, इस धुनी तो ए धुन नाम इसका पै जांदा है परा। ए हृदय तक पहुंचती है, थोड़ी जिया तरतीब बनती है अल्फाजा की, इनू कहिंदे ने पसंती। और ये जद कंठ तक पहुंच जाती है, जो कुछ कहना है सब कुछ तरतीब वार हो जाता है, इनू कहिंदे ने मधमा। जद जबान बयान कर देंदी है, इनू कहिंदे ने बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी, ये चार बाणियां ने। साडे कन जो सुनदे ने ये बैखरी नू सुनदे ने, जो जगत बोल रहा है। मधमा स्वानू स्वयं महसूस हो सकती है, पसंती असी खुद अनुभव कर सकते हैं, गहरी ध्यान साधना नाल परा तक भी जो है पहुंचाया जा सकता है। चूंकि ये आवाज पवन दे टकराव तो पैदा होती है, यही कारण है कि धन गुरु नानक देव जी महाराज ने पवन नू गुरु भी कह दिता है। पवन गुरु, पाणी पिता, माता धरत मात, देही माटी बोले पवन। बोलना ते पवन करके है, बोलन करके जगत देश संबंध स्थापन होंदे ने, सारे संबंध सारे रिश्ते बोल चाल ते खड़े ने। और बोलना मनुखी दुनिया दे च ही आया है, पशु पक्षियां कोल नहीं है, वनस्पति कोल नहीं है। जिस कोल ए बोलना नहीं है, सिर्फ आवाज है अल्फाज नहीं, वो वाकई दया दा पात्र बन जांदा है, गुंगा। जीवन दा सारा विकास उसका रुक जांदा है। ना कोई वो साइंटिस्ट बन सकता है, ना भगत बन सकता है, ना संगीतकार बन सकता है, ना कवि बन सकता है, ना ही गुंगे दी कोई कामयाब ग्रस्ती जिंदगी आती है। क्योंकि संबंध जोड़न दा वसीला उसदे कोल है ही नहीं। संबंध जुड़दे ने बोल चाल दे नाल। जिथे मनुख दे संबंध बड़े गूढ़े होन, मनुख कह देंदा है फलानी थां ते साडी बोल चाल बड़ी गूढ़ी है। और जिथे कोई रिश्ता नहीं, जिथे कोई संबंध नहीं, मनुख कह देंदा है साडी बोल चाल उत्थे नहीं है। इसका मतलब है संबंध बोल चाल ते खड़े ने, ते संबंध दा टुट जाना वास्तविक की है, बोल चाल दा बंद हो जाना। एक सियाणा मेहमान एक दिन देच अंदाजा ला लेंदा है कि पति पत्नी दे संबंध विच दराड़ पई है। क्यों? वेखदे ते ने बोलदे ने, वेखण दे नाल संबंध नहीं जुड़दा, बोलण दे नाल संबंध जुड़दा है। वेखदा ते मनुख दुश्मन नू भी है, वैरी नू भी है, पर रिश्ते ते उत्थे ही जुड़दे ने जिथे बोलना आरंभ हो जाए। एक सियाणा पुरश छेती समझ जांदा है कि दो मित्रां दे संबंध विच दराड़ पै गई है, दो भिरावां दे रिश्ते विच कोई दीवार खड़ी हो गई है। स्पष्ट हो जांदा है क्योंकि बोलना नहीं है। सारे जगत दे रिश्ते बोलते खड़े ने, गुंगे कोल आवाज है अल्फाज नहीं। यही कारण है कि आम किया जांदा है गुंगे दे इशारे गुंगे दी मां ही समझे, और कौन समझ सकता है? और ते कोई भी नहीं समझ सकता। दुनिया दी सब तो ज्यादा दया दा पात्र है गुंगा, जो किसे नाल भी संबंध जोड़न दे समर्थ नहीं है, और जिंदगी दे किसे भी पहलू दे विकास भी नहीं कर सकता। संसार दे इतिहास दे खला मौजूद है, गुंगा कोई कवि नहीं बनया, दार्शनिक नहीं बनया, फिलोसफर नहीं बनया, चिंतक नहीं बनया, संगीतकार नहीं बनया, भगत नहीं बनया, ज्ञानी नहीं बनया, और ना ही कोई विज्ञानी बन सकया, क्योंकि बोलना ही नहीं है। ये ज्ञानी होना, विज्ञानी होना, भगत होना, दार्शनिक होना, चिंतक होना, इति सारा बोलन ते खड़ा है। पातशाह दी बाणी कहिंदी बोलन हार परम गुर एही। ये जो बोलना है यही परम गुरु है। कुछ बोल ऐसे ने जिस करके संसार नाल संबंध जुड़दे ने उन्हों कहिंदे ने शब्द, पर कुछ बोल ऐसे ने जिन्हां नूं बोलीए ते निरंकार नाल संबंध जुड़दे ने उन्हां नूं कहिंदे ने गुर शब्द। वो सीधे परमात्मा तो आए होंदे ने, सीधे ईश्वर तो आए होंदे ने। संसार नाल संबंध जुड़दा है, संसारिक बोलां नाल, निरंकार नाल संबंध जुड़दा है, अध्यात्मक बोलां नाल, कसम दे बोलां नाल। पर एक अंतरा है, संसार दे च असी पहले वेखदे हां फिर बोलना आरंभ कर देंदे हां। अध्यात्मिक जगत दे च ऐसा है, पहले बोलांगे फिर दिखाई देवेगा। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव लइए। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, मन विच भावना रख के गाई जाओ, गाई जा बोली जा। उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तेरे बोल शांत नहीं हो जांदे ते खसम बोल नहीं पैंदा, परमात्मा बोल नहीं पैंदा। उतने चिर तक बोली जा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने एक जबान नू दो बना ले, दो नू लख बना ले, लख नू वी लख बना ले। एक एक रसना दे नाल लखां लखां वारी उस एक ईश्वर दा नाम रटन करी जा, बोली जा, बोली जा। एक दू जी बो लख होवे, लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीस। एत रापत पौड़ियां चढ़िए होए इकीस। परमात्मा दे दर्दियां यही पौड़ियां ने, चढ़ के तू एक ईश्वर दा रूप हो जाएगा। बोली जा, बोली जा, और उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तेरा बोलना चुप नहीं हो जाता और तेरे अंदर परमात्मा बोलन नहीं लग पैंदा। वाकई जिस दिन अपनी रसना शांत हो जाती है प्राणा दे शब्द चल पैंदा। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म ना आवा। इसे नु मेरे पातशाह ने कहा दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। इसे नु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे दी बाणी दे राही औरंगजेब नु उपदेश करदे होया आख्या लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन गमे हर दो आलम फरामोश कुन। जे तू दो जहाना दे गम दूर करना चाहना है ता अपने दमां दे प्यालियां दे खुदा दा नाम भर ले, ईश्वर दा नाम भर ले। भाई साहब भाई नंद लाल ते इथे तक कहंदे ने वाए बरनफसे के बेहुदा गुजस्त अल गयास अज गफलते मा अल गयास। हे गुरु जिड़ा स्वास तेरे नाम दे उचारण तो बिना लंघ गया, जिस स्वास दे शब्द नहीं सी तेरी याद नहीं सी उस गुजरे स्वास दा मैनू अफसोस बड़ा हुंदा है। एक ऐसी अवस्था हुंदी है प्राणा दे च रम जांदा है, स्वासां दे च रम जांदा है और अंदर बोलना आरंभ हो जांदा है। उत्थे मनुख नू अनुभव हो जांदा है कि बोलना ही परमात्मा है, इते बोल ही परमात्मा ने। इस तरह दे बोल जिन्हां दे अंदर प्रगट हो जांदे ने तो कह दिता जांदा है इस दे अंदर परमात्मा बोल पे है। खदीजा ने मुहम्मद साहब दी इस तरह दी अगम्मी अवस्था देख के कह दिता सी थोड़े अंदर ते खुदा बोल पे है। ते मुहम्मद साहब ने कह दिता हां अज तो मैं चुप कर गया, खुदा ही बोले है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साफ कह दिता मैनू बोलना आउंदा ही नहीं, मैं बोल सकदा ही नहीं, जो कुछ बोले है प्रभु बोले है, मैं सुने है जगत ने सुने है संसार ने सुने है मैं भी सुने है, पर बोल मेरे नहीं ये बोल परमात्मा दे ने। गजब दी गल जिस दे कंठ तो जिस दी सुराही तो ये बोल निकले ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਰਾਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬੁਝਾਈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨਰਥ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਮੜੇ ਨੇ ਬੱਦਲ, ਇਹ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੀ ਬਰਸਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਆਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੌਲਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿਰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਜੈਸੇ ਬੂੰਦ ਤੇ ਸਾਗਰ, ਜੈਸੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਸਾਗਰ। ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬਹੁਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗਤ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਦਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਖੜੀਏ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਖੜੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ उस तो सदके किते जा सकते ने, उस तो कुर्बान किते जा सकते ने, वह तो इतना महान हो जाता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी अगम अगाध ए महिमा, जिन्हों समझण लई एक विवेक बुद्धि चाहिए है, मत्था टेकदे होया अंदरों ये मंग भी करनी चाहिए, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे गुरु मैं समझ सकदा तैनू तेरी दित्ती हुई बुद्ध नाल, और जैसे गुरु दी समझ पैंदी है उसे समझ दे चो समझ आ जांदी है परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरंकार दी, करतार दी। इस वास्ते कहिंदे ने गुरु नू समझना परमात्मा नू समझना है, गुरु तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है, और गुरु दी प्राप्ति परमात्मा दी ही जो है प्राप्ति है। गुरु दे बारे जो एक भरम भुलेखा साडे देश दे ते सारी दुनिया विच व्यापक है, इसनू मैं तुच्छ बुद्धि नाल खोलण दी जो है कोशिश कीती है। अगर गुरु वाकई काया है तो काया ते हर एक दे कोल है, और गालबन 5 अरब दे करीब काया ने, सारे गुरु हो गए। ते जे कह दईए नहीं ज्ञान गुरु है, अनुभव प्रकाश फिलसफा, तो फिर गल स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे दुनिया सियाणी होवेगी, और जिस दिन सारी दुनिया सियाणी हो गई उस दिन एको ही गुरु होवेगा सारे जगत विच, और वो गुरु होवेगा शब्द गुरु, बाकी कोई भी गुरु नहीं होवेगा। और जिन्हां जिन्हां दे कोल ये शब्द गुरु होवेगा वह भी कहणगे कि जो असी बोल रहे हैं, जो असी कह रहे हैं ये गुरु है, असी गुरु नहीं हाँ। पर ना समझ सरोते ते हंकारी वक्ते कह सकते ने असी गुरु हाँ, असी गुरु हाँ, काया गुरु हाँ। भगत कबीर जी महाराज का एक बड़ा कीमती बोल, आप कहते ने सो गुर करो जे बहुर ना करना, ऐसा गुरु करो बार बार ना करना पवे। इस गुरु दी लाश निकल गई, दफन कर दिता, फिर की करोगे। परमात्मा मरदा नहीं, शब्द कदी मरदा नहीं। परमात्मा अमर है, शब्द सतीवी है, हमेशा है। परमात्मा व्यापक है, शब्द भी जो है व्यापक है। इस वास्ते कबीर कहिंदे ने सो गुर करो जे बहुर ना करना, सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। शब्द नू जप जप के अपना हंकार ऐसा मार दो, अपनी मैं नू ऐसा मिटा दो, परमात्मा नू प्रगट कर दो, ताकि बार बार न मरना पवे। वाकई अमर ज्योति गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे नाल जुड़दे आई जन्म मरण दे गेड़े तो मनुख बच जांदा है इस युग दे, और हमेशा लई जुगो जुग अटल। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जगत दी रहबरी करन वाले, सारियां दी रहबरी करन ते सारियां दे मन दी श्रद्धा उत्पन्न होवे, कहण दा इस वक्त इतना ही मुद्दा सी।